साथ तेरे है हर पल सुनहरा, साथ तेरे है हर पल सुनहरा। ओ बाबा दिल ने पुकारा, ओ बाबा सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा।
शांति। आदरणीय राजू भाई जी का हम सब फिर से स्वागत करते हैं। ज्ञान के विभिन्न पहलू हैं और हर पहलू की विस्तृत जानकारी, उसकी गहराई आदरणीय राजू भाई के पास है, तो हम चाहेंगे कि आज इस विषय पर प्रकाश डालें कि यज्ञ स्नेही और यज्ञ सहयोगी हम कैसे बने। तो लीजिए हम सुनते हैं आदरणीय भाई जी के मुखारविंद से। राजू भाई जी।
ओम शांति। यज्ञ पिता और यज्ञ माता दोनों के बेहद घर में हम सब बैठे हैं। यज्ञ माता की स्मृति दिवस के दिनों में चारों तरफ मम्मा की विशेषताएं सुनाई जा रही हैं। मधुबन के क्लास में भी अभी एक बहन सुना रही थी। मधुबन में मम्मा का कमरा पता है कौन सा था मालूम है? कहाँ रहती थी मम्मा? किसको किसको मालूम है? दो ही जने टीचर्स को ही मालूम है, बस किसी को नहीं मालूम। बाबा का कमरा जो है उसके साथ पीछे साइड में दीदी रहती थी मम्मा के बाद, और अभी ऑफिस बना हुआ है, सिटिंग रूम, वो मम्मा का कमरा था। और बाबा और मम्मा के कमरे के बीच में जो बाबा की ट्रांस लाइट है, इसके साथ एक छोटा सा दरवाजा था। तो मम्मा और बाबा यहाँ ही दोनों रहते थे इसी रूम में, और मम्मा के ये दो तीन दिन लास्ट के जो दिन थे, मम्मा के शरीर में बहुत तकलीफ थी लेकिन चेहरे पर कुछ भी नहीं था। लास्ट दिन भी मम्मा ने अपने हाथों से सबको अंगूर खिलाए, नैनों से दृष्टि दी। पता था कि मम्मा कुछ समय की मेहमान हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, लेकिन मम्मा बिल्कुल बेफिक्र बादशाह थी। बाबा बाजू में बैठ करके मम्मा के साथ सब बच्चों से मिलाते रहे जो भी आए हुए थे, और ड्रामा अनुसार उस समय मेरे लौकिक पिताजी यहीं पर थे। उनका टिकट होगा तो चेंज हुआ डेट, तो मैं लौकिक गांव में था तो फोन उस समय नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, गांव में साधन नहीं थे, फिर भी कहीं न कहीं से मैसेज मिला कि मम्मा ने शरीर छोड़ा है। कोई कोई पता नहीं था कि मम्मा इतनी जल्दी अव्यक्त हो जाएंगी, क्योंकि मम्मा की आयु बहुत छोटी थी और पुरुषार्थ बहुत तीव्र था। मम्मा बाबा की हर आज्ञा का कदम कदम, बाबा कहता है ना, आज्ञा पर उठाओ। मम्मा ने कभी भी बाबा की किसी श्रीमत में प्रश्न नहीं किया, ये क्या है, ये कैसे है, कोई क्वेश्चन नहीं। बाबा ने कहा और मम्मा ने किया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हम यज्ञ पिता को कहते हैं, ये कपल मुनि है, कहते हैं ना कपल मुनि थे जो कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या करते थे, और उनके साथ एक गऊ थी जिसका नाम कामधेनु था। उस कामधेनु के सामने जो कोई जाता था उसकी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती थी। उन्होंने स्थूल रूप में शिव बाबा के माध्यम को नंदी बैल के रूप में दिखा दिया और कामधेनु को गाय के रूप में दिखा दिया। अब गाय पशु के द्वारा सबकी मनोकामनाएं पूरी हों ये तो संभव नहीं लगता, लेकिन यज्ञ पिता और यज्ञ माता को जिन्होंने प्रसन्न कर लिया, जिन्होंने यज्ञ की बहुत प्यार से सेवाएं की, स्नेही और सहयोगी बन करके रहे, उनकी सब मनोकामनाएं बाबा ने पूरी कर दी। हम लोगों का ये बहुत प्रैक्टिकल अनुभव है कि बाबा के यज्ञ में जब से आए, बाबा ने यज्ञ रचा 37 में स्थापना कायदे सिर ओम मंडली की 1937 दिवाली के समय हुई, जब बाबा ने अपने आप को समर्पित किया, कन्या माताओं के सामने ट्रस्ट बनाया, ओम मंडली के नाम से इसकी स्थापना की। उस समय एक बहुत छोटे रूप में इसकी शुरुआत हुई और बाबा की मुरलियों में यज्ञ की बात उस समय से ही आती कि जब शिव बाबा इस तन में आए रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना हो गई और ये यज्ञ सब विघ्नों को हटाने के लिए, इस कलयुग को स्वर्ग सतयुग बनाने के लिए रचा है। पहली पहली मुरलियां बाबा की चली, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी और पूरी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। ऐसा क्या यज्ञ के अंदर हो रहा है जो पूरी दुनिया स्वाहा होगी, और इसको यज्ञ क्यों कहा है, इसका पूरा नाम क्या है? राजस्व स्वराज्य के लिए अश्वमेध, ये मेध माना भस्म करना, जलाना है। किसको? अश्व को। लोगों ने यज्ञ रचे तो उसमें स्थूल में घोड़े को अश्व को स्वाहा किया, लेकिन ये जो घोड़ा है, ये जो रथ है, इसका इसमें समर्पण करना, ये ऐसा रुद्र ज्ञान यज्ञ है, अविनाशी यज्ञ है। यज्ञ इसलिए कहा जाता, यज्ञ में अग्नि होती है। यहां पर इतनी पवित्र आत्माओं के लगन की आग है और इस लगन की अग्नि में सब आत्माओं की जितनी बुराइयां हैं वो सब स्वाहा हो जाती हैं। कलयुग सतयुग में परिवर्तित हो जाता है। तो बाबा ने यज्ञ की स्थापना की, ब्राह्मणों को यज्ञ सेवक बनाया और खुद भी सेवाधारी बन करके यज्ञ की सेवा की। ब्रह्मा बाबा ने कैसे यज्ञ चला वो तो 14 साल का इतिहास अलग प्रकार का था। उसमें बाबा ने सब राज स्पष्ट किए। ये ज्ञान जितना स्पष्ट हुआ है वो 14 साल एक तरफ ट्रांस मैसेज के द्वारा होता गया। संदेशियां जो छोटी छोटी बहनें आई, उम्र में बहुत छोटी थी, गुलजार दादी 9 साल की थी, और आते ही इनको ट्रांस का पाठ मिला। इनके साथ 2-3 दादियां और थी जो कई कई दिनों तक वतन में रहती थी, और उनके द्वारा सारा ज्ञान स्पष्ट होता गया। 3 लोक क्या हैं, 3 काल क्या हैं, मनुष्य आत्मा इस सृष्टि चक्र में कैसे आती हैं, कैसे पुनर्जन्म लेती हैं, ये जितना हमारा पुराने चित्रों में ज्ञान है, त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, ये जो चित्र हैं आपने देखे होंगे हिस्ट्री हाल के अंदर, वो उस समय के चित्र बाबा के समय के लगे हुए हैं, पुराने चित्र, और उनमें वही ओरिजिनल ज्ञान लिखा हुआ है जो बाबा ने उस समय सुनाया। तो बाबा ने जो ज्ञान स्पष्ट किया, संदेशियां आकर के सुनाती थी, फिर बाबा उसको सुन करके वेरीफाई करते थे, शिव बाबा आकर के, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। तो धीरे धीरे 14 साल तक तपस्या भी की और ट्रांस मैसेज के द्वारा यज्ञ अंदर ही अंदर चलता रहा, बाहर सेवाएं नहीं हुई, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा हुआ, बहुत दंगे हुए, लेकिन बाबा ने इन किसी को भी पता नहीं चलने दिया कि संसार में क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर ही सब तपस्या करते रहे। जब बाबा भारत में आए, उसका भी बड़ा इतिहास है, कैसे भारत में आए और क्या क्या हुआ, लंबी कहानी है, क्योंकि बाबा के और बहनों के सभी लौकिक संबंधी सब भारत भाग करके आ गए थे 47 में ही। तो 3 साल तक यज्ञ वहीं चलता रहा, और बाबा की ये मुरलियां चलती थी उस समय कि बच्चे विनाश तुम पहाड़ों पर बैठ करके देखोगे, वहां से सारी दुनिया को सकाश दोगे। तो ये सोचते थे तो सागर के किनारे पर हम बैठे हैं, और बाबा कहता तुम ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बैठोगे, तो कौन सा स्थान होगा। फिर बाबा के जो लौकिक गुरु थे, उनका नाम था गंगेश्वरानंद, जो लास्ट गुरु थे, वो माउंट आबू में उनका यहाँ एक आश्रम है, अभी भी है, तो यहीं रहते थे। और उन्होंने बाबा को निमंत्रण दिया कि बाबा ये ऋषि मुनि की तपस्वी भूमि है आबू, बहुत अच्छा स्थान है, और हमारी राय है कि आप पूरी संस्था को यहाँ लेकर के आ जाओ। तो उन्होंने निमंत्रण दिया और सब संबंधी जो बहनों के थे, उन्होंने कहा कि बाबा पाकिस्तान में आप क्या करोगे, वहां रह के भारत में सेवाएं करो आके। तो तीनों तरफ से, एक तरफ से शिव बाबा के संदेश आ रहे थे, दूसरी तरफ से लौकिक गुरु लोग भी बुला रहे थे और संबंधी भी बुला रहे थे। सबके निमंत्रण को स्वीकार करके बाबा पूरी संस्था को, पूरा सामान सहित जो कुछ यज्ञ के अंदर था, वो सब कुछ लेकर के, क्योंकि वहां के जो मिनिस्टर्स थे, चीफ मिनिस्टर, उस समय बहुत सहयोगी थे, उन्होंने बाबा को बहुत सहयोग दिया और कहा भले सब सामान सहित आप जा सकते हो। पहले तो उन्होंने कहा आपको जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप लोग तो अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह का संदेश दे रहे हो, आप भले यहां रहो, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन बाबा की, शिव बाबा की प्रेरणाएं आती गई और बाबा ने निर्णय लिया कि हम माउंट आबू को चुने। बहने आई यहाँ, देखा ब्रज कोठी को, भरतपुर राजा की कोठी को, उनको पसंद आ गई कि यहाँ रह सकते हैं हम 450-350 लोग, तो उस कोठी को चुना और वो ले लिया। मई में 1950 में भारत आए, और यहाँ पर आए तो पेपर शुरू हुए, और वो ऐसे पेपर थे जो बहुत हिलाने वाले थे। पहला पेपर, यहाँ की मौसम किसी को सूट नहीं किया, क्योंकि इतनी बड़ी बरसात, बहुत अधिक बरसात होती थी, तो उस बरसात में फाग होने के कारण तो गर्मी में रहने वाले ठंडी सहन नहीं कर पाए, और कपड़े भी इतने नहीं ले आए थे, गर्म देश से आए, गर्म कपड़े भी नहीं थे, तो अधिकतर सब बीमार पड़े, डॉक्टर तो थे नहीं। और जब बीमार पड़ने लगे तो उनके लिए दवाई चाहिए, ये चाहिए, वो भी कोई साधन ऐसे नहीं थे, और जिन्होंने निमंत्रण दिया था उन्होंने भी पेपर लिया, उन्होंने समझा कि अगर अब बाबा को कोई सहयोग नहीं मिलेगा तो ये संस्था टूट जाएगी और जो बच्चियां हमारी यहाँ गई हैं वो सब वापस आ जाएंगी। इसलिए उन्होंने भी कोई भी प्रकार से साथ नहीं दिया। तीसरी तरफ जो भी था लेकर के आए थे, थोड़े समय खाया पिया, वो सब खत्म होता गया, क्योंकि नई सेवाएं, नया कोई समर्पित तो था ही नहीं। बाबा की प्रॉपर्टी और एक दो परिवार जो समर्पित पूरा हुए थे, उनसे 14 साल तो बाबा ने खूब प्यार से पालना की। लेकिन यहाँ आते ही जब ये पेपर आए तो सारा सामान सहित खाली हो गया, सब कुड़की हो गया, कुछ नहीं बचा। और वो बाबा की बहुत चतुराई थी, बच्चों को परखने की, उनके निश्चय को जानने की, क्योंकि वायदा था तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही संग रहूं, अंत तक तुम्हारे साथ ही रहूं, तो ये संकल्प लेकर के सब चल रहे थे। जब पेपर आया तो सबके अंदर संकल्प आने लगे कि अब तो कुछ खाने के लिए नहीं है, हम जाके कुछ कमाई करके आए। तो जिन्होंने ये सोचा कमाई करके आए, बाबा ने कहा, बच्चों बाबा ने तुमको इसलिए नहीं बनाया है, इसलिए तैयार नहीं किया है कि तुम लौकिक दुनिया में जाकर के पैसा कमा करके आओ। पैसा तो तुम्हारे पास अविनाशी धन है, ज्ञान धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, ये धन तुम बांटो। अगर ये धन बांटोगे तो वो धन अपने आप आ जाएगा। तो लोगों को इस बात की समझ कम थी, तो उसमें कई जो थोड़ा बहुत संशय बुद्धि थे वो हिले और वापस अपने अपने, कोई बंबई चला गया, कोई कलकत्ता चला गया, कोई मद्रास चला गया, जहां संबंधी थे उनके, वो लौकिक में कई इसमें भागंती हो गए। जो पक्के थे, बहुत निश्चय बुद्धि थे, जैसा बाबा कहे वैसा करेंगे, उन बच्चों ने बाबा की बात को समझा, उस पेपर का सामना किया और जाकर के जमुना के गंगा के किनारे बैठ करके चित्र लेकर संदेश देना शुरू किया, ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। जो सामने आता था उनको देवियों का साक्षात्कार हो जाता था, पवित्र आत्माएं, दुनिया का कुछ भी पता नहीं, पैसा क्या होता है, सिक्का क्या होता है, कोई जय चीज का ज्ञान नहीं। और वो जब सेवाएं शुरू की, लोगों को अच्छे अच्छे अनुभव होने लगे, तो उन्होंने कहा, अरे आप इतनी पवित्र कन्याएं, देवियां, ये पानी के किनारे गंगा पर, जमुना पर धूप में क्यों बैठी हो, चलो आपको हम सेंटर, आपको स्थान देते हैं। वहां से ही सबसे पहले सेंटर्स खुले, कानपुर में खुला, लखनऊ में खुला, इलाहाबाद कुंभ मेले से सेवाएं शुरू हुई, दिल्ली में खुले, फिर उसके बाद पंजाब में खुले, धीरे धीरे निमंत्रण एक के बाद एक मिलते गए, सेवाओं का विस्तार हुआ और यज्ञ की विधिवत, जैसे ज्ञान यज्ञ की जो स्थापना हुई। स्थूल रूप में तो वहां तपस्या की, लेकिन यहाँ पर यज्ञ के रूप में सबकी तन मन की आहुति पड़ने लगी। बहुत से बाबा के बच्चे स्नेही और सहयोगी निकलने लगे, गुप्त रीति से सहयोग मिलने लगा। उन्होंने देखा कि ये बहनें इतनी तपस्या कर रही हैं, इतना अधिक मेहनत कर रही हैं, और देखते थे अगर भंडारे के अंदर उनके चले जाते थे तो भंडारे के अंदर केवल एक नमक की छीसी होती थी, आलू जो छोटे छोटे बाजार में मिलते हैं वो आलू एक दो किलो होते थे और आटा होता था, इसके सिवाय उनके भंडारे में कुछ नहीं होता था। आलू का रस बनाया, नमक डाला, रोटी बनाई और खा लिया। तो उनका त्याग देख करके लोगों को बड़ा जैसे आता था, ये बहनों को क्या है आखिर, इतना त्याग मूर्ति होकर के रहती हैं। तो कोई घी का डब्बा ले आया, कोई कोई चीज ले आया, और जो कुछ आया उठाया और यज्ञ में भेज दिया, बाबा को भेज दिया। मैं क्यों खाऊंगी, मैं तो, बाबा ने हमको सेवा के लिए भेजा है। तो जो कुछ मिला वो यज्ञ में आने लगा, यज्ञ बढ़ने लगा, यज्ञ सेवाएं शुरू हो गई। विघ्न भी बहुत आए, क्योंकि बहनों के दृष्टि में वो चमत्कार था, जिसको लोगों ने समझा ये जादू है। दृष्टि देती थी और वो ट्रांस में चले जाते थे, सामने पूरा क्लास का क्लास बैठे बैठे ट्रांस में चला जाता था। सतयुग का दृश्य देखते थे, श्री कृष्ण के साथ डांस करते थे, तो लोग पहले तो बहुत प्रभावित होते थे, संगठन बढ़ जाता था, लेकिन जब ज्ञान सुनते थे, धारणाएं करने लगते थे, तो धारणाओं के बाद सब जगह झगड़े शुरू हो जाते थे। पवित्रता के कारण बहुत हंगामे होने लगे, घर घर में झगड़े होने लगे। तो लोगों ने समझा पता नहीं ब्रह्मा कुमारियां क्या करती, घर पिटाने का ज्ञान देते, बहुत हंगामे किए। सबसे बड़ा हंगामा हुआ हापुड़ के अंदर यूपी में, सारे समाजी लोग बहुत थे और बहुत हंगामा कर दिया कि इन बहनों को यहाँ किसी भी हालत में रहने नहीं देना है, निकाल देना यहाँ से। बाबा के बच्चे तो बहुत दृढ़ होते हैं, पक्के होते हैं, जहाँ जाते हैं कुछ भी हो जाए, मरेंगे मिटेंगे हटेंगे नहीं। तो बाबा ने को समाचार मिले, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा था। एक बूढ़ी माता जो वहां से निकली थी हापुड़ से, उसको उन्होंने कह दिया कि एक 16 साल की कन्या को ये लोग भगा करके ले गए हैं, थी बूढ़ी, उसको यहाँ ही सरी छोड़ा मधुबन में ही। जब उसको कोर्ट के अंदर हाजिर किया गया, बुलाया गया, तो बोला ये कौन, ये 16 साल की है क्या? कहा क्यों जाती है तुम ब्रह्मा कुमारी में, क्यों जाती वहां, क्यों जाती हो? तो बोलती है वहां पर हम प्रिंस प्रिंसेस बनने की पढ़ाई पढ़ने जाते हैं। और प्रिंस प्रिंसेस भी बोलना उसको नहीं आता था, प्रिंट प्रिंटेड पढ़ने की पढ़ाई जाते। बहुत नशा था, बहुत हिम्मत वाले थे सब, और मम्मा तो सहनी शक्ति थी हमारी। तो बाबा ने मम्मा को भेजा, कुछ मुख्य भाइयों को भेजा, और मम्मा ऊपर दूसरी मंजिल पर बैठी थी मकान के अंदर, सारा हंगामा शुरू हुआ। तो नीचे से लोगों ने कहा कि अभी तो ट्रक मंगा लिया कि सामान भरो, और सब सामान भर करके इनका दिल्ली में भेज दो, यहाँ से यहाँ नहीं रहने देना संस्था को। तो इन्होंने बहनों ने डर के मारे दरवाजे बंद कर दिए कि कोई हंगामा न हो, बाहर भले हंगामा करते रहे, लेकिन उनको इतना जोश था जो उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। और दरवाजा तोड़ करके 7-8 लोग एकदम हंगामा करते हुए घुस गए, तुम्हारी माँ कहाँ है, तुम्हारी मम्मा कहाँ है, मैं उनको आज देखूंगा, पहले उनको निकालूंगा यहाँ से। और मम्मा ऊपर बैठ करके योग में तपस्या कर रहे थे, दौड़ते दौड़ते ऊपर पहुंच गए। मम्मा ने देखा ये आ गए हैं सभी, उन्होंने आओ बच्चे ऐसे कहा और बिठा दिया ऐसे सबको, सब बैठ गए चुपचाप। और मम्मा बहुत प्यार की दृष्टि देते, कुछ नहीं बोली, न वो कुछ बोले न वो कुछ बोले, इतनी शक्ति थी उसके अंदर जो सब दृष्टि देते रहे। ऐसे बैठ गए शांति पूर्वक, 15-20 मिनट ऐसे बैठे रहे, चुप, एकदम साइलेंस हो गया, और चुपचाप उतर करके नीचे चले गए, कुछ नहीं बोले। बाहर जाकर के बोलते हैं भाई ब्रह्मा कुमारियां कैसी भी हों, इनकी माँ तो जो साक्षात देवी है। तो कहते देखा इसको भी जादू लग गया। उसके बाद शांति हुई वहां के, फिर लोगों ने, सरकार ने बहुत मदद की, और फिर वो संस्था वहां ही जमी रहा, कोई निकाल नहीं पाया। जहां हिम्मत है वहां पर मदद है, जहां निश्चय है वहां पर विजय है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है, हमारे पक्के स्लोगन है ये। ये 4 स्लोगन मैं हमेशा कहता हूं, सदा याद रखना, जहां हिम्मत है वहां बाबा की मदद है, ऐसे मांगते रहो कभी नहीं मिलेगी। लेकिन हिम्मत का एक कदम मेरा तो 1000 गुना बाबा मदद के लिए बंधा हुआ है। अगर निश्चय मेरा अटूट है, अटल है, कौन हमारा साथी है, किसका ये यज्ञ है, किसने स्थापना की है, कोई हिला नहीं सकता, कितने भी आसुरी शक्तियां इसमें विघ्न डालें, पड़ेंगे विघ्न। बाबा ने जिस दिन से स्थापना की उस दिन से कह दिया कि मैंने यज्ञ रचा है और इस यज्ञ में विघ्न अंत तक पड़ेंगे, अभी तक भी पढ़ते रहते। जो नहीं समझ पाते हैं इस ज्ञान को, जिनको निश्चय नहीं होता, वो बहुत रुकावटें डालते हैं, बहुत विघ्न डालते हैं। जिस प्रकार से रोक सकते रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन बाबा कहता है सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन पक्की है ना, पक्का है ना सबको, कितना भी तूफान हिलाएंगे इसको लेकिन ये डूबने वाली नहीं है, क्योंकि इसका खिवैया स्वयं भगवान है, उसने यज्ञ की स्थापना की है। एक बार की बात सुनाता हूं, कई प्रकार के विघ्न यज्ञ में आते हैं, बहुत सारी बातें छोटी मोटी आती हैं। तो एक दिन बाबा को बुलाया गया, अव्यक्त बाबा मधुबन निवासियों से मिलने के लिए आए, हाल बन गया था, ओम शांति भवन में ही आए। तो दादी और बड़े भाई बहन साथ में बैठते हैं, तो बैठ गए जा करके, और हम सब सामने थे, मैं टाइप कर रहा था साथ में, रिकॉर्डिंग भी हो रही थी। तो बाबा मुरली चलाते चलाते ऐसे ही पूछने लगे, जैसे घर में कैसे चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, क्या हो रहा है, जैसे बाप बच्चों से पूछता है ना, बाबा को तो सब पता होता है फिर भी पूछता है। तो पूछने लगे तो दादियों ने बाबा को कुछ न कुछ कान में सुनाया कि बाबा ऐसी रुकावट है, कुछ इनकम टैक्स की बात है, कुछ ये है, कुछ ये, कई प्रकार की बातें थी। जब बाबा को सुनाई गई तो बाबा पहले तो मुस्कुराने लगे, फिर हम लोगों की तरफ इशारा किया, अभी टाइप करना, ये रिकॉर्डिंग करना बंद कर दो, घर की बातें, घर की बातें हो रही थी। तो बहुत सारी बातें सुनाई गई बाबा को, स्पष्ट कि ये विघ्न है, ये बातें आ रही हैं, ऐसी आती हैं, ऐसी आती। बाबा मुस्कुराता रहा, सुनता रहा, सबसे सुना, जिसने जो सुनाना था सबने सुनाया। फिर बाबा बोलते हैं मुस्कुराते हुए कि बच्चे वो सवेरा जो आने वाला है उसको कोई रोक सकता है क्या, जिसलिए यज्ञ की स्थापना हुई है, नई दुनिया की स्थापना के लिए यज्ञ स्थापित हुआ है, कोई कितने भी विघ्न डाले, कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन उस सवेरे को कोई रोक सकता है क्या, वो तो आना ही है, वो नई दुनिया तुम्हारी आनी ही है, ये पेपर आते हैं खत्म हो जाएंगे, चिंता नहीं करो, सोचो नहीं, परवाह नहीं करो, जो हो रहा है सब ठीक है, उसमें भी कुछ कल्याण है, उसमें भी कुछ भलाई है। और सचमुच देखा गया है कि जो कुछ हम देख रहे हैं अब वो विघ्न कई प्रकार से यज्ञ को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। जहां भी कोई ऐसे कोई रुकावटें आई हैं, जिस भी बात में आई हैं, उन बातों ने यज्ञ को और आगे बढ़ाया है, कई आत्माएं स्नेही सहयोगी बनी हैं, बाबा के बच्चे बन गए और उन्होंने बहुत समय पर मदद की। क्योंकि ये जब कोठी ली गई, यहाँ पर एक पोखरान हाउस है, पोखरान राजा का एक सामने जामोदी भवन है ना, यहाँ पर एक मकान है, उनका ही ये स्थान था, बहुत खुला पड़ा था, ये जो पुरानी बिल्डिंग है यही थी। तो जिसने लिख के दिया बहुत सस्ते दाम पर, इसको दे दिया, ले लिया गया, लिखा पढ़ी हो गई, लेकिन बाद में जो मालिक था उसको कईयों ने भड़का दिया, और भड़का दिया कि तुमसे कोई भूल हुई है, इतनी बड़ी जमीन पांडव भवन, 4 एकड़ 4.5 एकड़, तुमने कैसे इतनी सस्ती दे दिया है। तो वो बहुत हंगामे करने लगे, बहुत हंगामे करने लगे। तो यहाँ एक बहुत बाबा का स्नेही बच्चा था, सरदार था, नेवन सिंह, और वो सरदार बहुत शक्तिशाली था, बंदूक रखता था साथ में, वो आके खड़ा हो गया कि देखूं बाबा को कौन क्या करता है। स्नेही सहयोगी बच्चों ने इतनी मदद की समय पर, बाबा तो कुछ कह नहीं सकता, बहनें क्या कहेंगे किसी को, लेकिन वो इतने हंगामे करने लगा कि यहाँ पर पांडव भवन में इस स्थान को खाली करना पड़ेगा, वो आके यहाँ पहरा देने लगा बंदूक लेकर के, बहुत उस समय यज्ञ की संभाल की, और बाबा को बिल्कुल निश्चिंत कर दिया, कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई इलीगल नहीं है, लीगल लिया गया है, कायदे से लिखा पड़ी हुई है, पार हो गई बात। समय पर सहयोगी मिले, यज्ञ स्नेही जो थे गुप्त, भले ज्ञान में नहीं चले, लेकिन आज भी उनके पोत्रे, उनका परिवार है, दादियां उनके उस समय के रिटर्न से अभी भी यहाँ पर मधुबन के अंदर कोई भी चीज आती है जो मधुबन वाले खाते हैं, मान लो जैसे आजकल आम की सीजन चल रही है, सब तरफ से जहां पर आम के बगीचे हैं, कोई ट्रक के ट्रक भेज देते हैं, तीन चार ट्रक गुजरात से आम आते हैं इस समय, और सबको मिलते हैं, मधुबन निवासियों को हर दूसरे दिन आम मिल जाते हैं। तो दादी हमेशा कहती थी, जो मधुबन वाले खाते हैं, जो भी यहाँ मिलता है, ऐसे परिवार जिन्होंने समय पर साथ दिया है, सब कुछ उनके पास ले जाओ, दे आओ पहले। हरेक के पास यहाँ से जो चीज यहाँ आती पहले उनके पास जाती, उन परिवारों को मिलती जिन्होंने समय पर साथ दिया। अभी तक भी सिस्टम बनी हुई है। तो दादी ने बहुत उनका ख्याल रखा, क्योंकि समय पर बहुत सहयोग दिया, यज्ञ स्नेही बने। एक बाबा का और बच्चा बहुत स्नेही था, एक सन्यासी था यहाँ पर, और उसकी बहुत भावना थी। 108 साल की उम्र में अभी शरीर छोड़ा है थोड़े दिन पहले। गौमुख में उसके पास 40-50 एकड़ जमीन थी। कुछ समय पहले वो बीमार पड़ा, और बीमारी जब ज्ञान सरोवर नहीं बना था उसके पहले की बात है, तो बीमारी के समय पवित्र था, बाबा के यज्ञ के प्रति बहुत स्नेह था, प्यार था बाबा से। तो उसको बनारसी भाई हमारे डॉक्टर थे, उसको देखा कि बीमार पड़ा है, ऑपरेशन कराना है, तो उसको ले गए, मदद की। अहमदाबाद में उसका हॉस्पिटल में ऑपरेशन भी करवाया, मदद कर दी। और ऑपरेशन के समय उसको ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार हुए, और उसको ऐसे लगा कि बाबा मेरे साथ खड़े हैं, और डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करें, बाबा खुद कर रहा है। तो नेचुरल है, कोई व्यक्ति को बहुत अच्छे अनुभव हो जाते हैं, साक्षात्कार हो जाते हैं। तो जब यहाँ आया आबू में, तो उसने बुलाया अपने भाइयों को, दो चार भाइयों को, कि ये सारी जमीन मैं आपको लिख करके देता हूँ, यहाँ पर 38-40 एकड़ बीघा जमीन है यहाँ पर, और आप यहाँ पर अपना एक दूसरा आश्रम बनाओ। उसने अपने भाइयों को, तीन चार भाइयों को ट्रस्टी बना करके, और सारी जमीन के कागजात दे दिए कि आप लिखा पढ़ी करा लो। दादी के पास समाचार आया। दादी ने कहा कि मैं बाबा के बिना पूछे तो नहीं लूंगी, बाबा से पूछूंगी। तो छोटे हाल में बाबा को बुलाया गद्दी पर, पहले गद्दी पर बाबा ऐसे नीचे आते थे, छोटा हाल है ना, हिस्ट्री हाल, साइड में गद्दी लगाते थे और वहां पर बाबा को बुलाते थे। तो बाबा आए और हम सब सामने थे, बहुत छोटा परिवार था, तो सब बैठे थे। बाबा आते ही कहते हैं, बच्चे जो जमीन आपको मिल रही है ना, उसके कागज वापस करके आओ, बाप को नहीं चाहिए। सब सोचने लगे, इतने सारे आगे हम बढ़ गए, बाबा को बताऊं तो डिटेल में क्या है, क्यों दे रहा है वो। बाबा ने सुना ही नहीं, कोई से सुना नहीं, डिबेट भी नहीं पूछी, कुछ नहीं कहा। बाबा को सन्यासियों की जमीन नहीं चाहिए, कागज वापस कर दो। वो सीरियस था, थोड़ा ऐसे बोला। सब सोचने लगे, दादी ने भी सोचा कि बाबा से ऐसा जवाब तो नहीं आएगा, बाबा पूछेगा कहाँ है, क्या है, कैसे दे रहा है, कुछ नहीं पूछा बाबा ने, वापस कर। दूसरे दिन वापस कर दिए गए कागज, उसको दिए गए। क्या हुआ, हम बैठे हैं ना, आप क्यों चिंता करते। बाबा की प्रेरणा नहीं है। तीन चार दिन के बाद उसने कुछ नहीं बोला, कहता नहीं आप विचार कर लो, सोच लो, हम तो आपको कैसे भी करके देंगे, आपको ही देंगे, कोई को नहीं देंगे। तीन चार दिन के बाद उनकी कमेटी को, उनके सन्यासियों को पता चला कि ब्रह्मा कुमारी को दे रहे हैं। वो सब लाठी ले लेके वहां पहुंच गए, जाकर के घेर लिया वहां आश्रम को। और बोलते हैं देखें कैसे तुम देता है ब्रह्मा कुमारी को। वो भी बंदूक निकाल लिया, बहुत बाधा करता सन्यासी, कहता मैं तो उनको ही दूंगा। लेकिन बाबा ने तो पहले वापस कर दिया था, नहीं चाहिए। और सचमुच जब पता चला उन लोगों को कि उन लोगों ने तो कागज सब वापस कर दिए, उनको चाहिए ही नहीं, तो ऐसे ही चुपचाप चले गए। बाबा ने बहुत यज्ञ की कैसे सेफ्टी रखी, कैसे बच्चों को बचाया, कैसे कैसे यज्ञ को आगे बढ़ाया। हम सब समझते हैं बाबा ऊपर है, निराकार है, लेकिन बाबा एक एक बात के लिए अभी तक भी इशारे में गाइड कर रहा है। साकार में भी आके गाइड करता है, संदेश के माध्यम से भी गाइड करता है। अगर हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर क्लीन है तो बुद्धि को भी टच करके भी गाइड करता है। ऐसे बाबा का यज्ञ वृद्धि को प्राप्त हुआ है, निर्विघ्न रूप में चला है। जहां भी कोई प्रकार का विघ्न आने वाला होता है, बड़ा रूप होता है, बाबा अपने आप टच करके बच्चों को सेफ कर देता है। विघ्न डालने वाले डालेंगे, लेकिन जो बाबा के यज्ञ रक्षक बच्चे हैं, एक हैं यज्ञ स्नेही, दूसरे हैं यज्ञ सहयोगी और तीसरे हैं यज्ञ रक्षक। यज्ञ रक्षक उनको कहा जाता है जो अपनी ऊंची मर्यादाओं को पालन करते हुए अपनी श्रेष्ठ स्थिति से अच्छा वायुमंडल बना करके रखते हैं। क्योंकि हमारे शुद्ध संकल्पों की शक्ति, हमारे पवित्र विचारों की शक्ति, इसके लिए यज्ञ के लिए एक रक्षा कवच बनती है। इस यज्ञ में कई प्रकार की कमजोर आत्माएं विघ्न रूप बनती हैं। अगर कोई भी एक श्रीमत की अवज्ञा करता है कहीं पर भी किसी कोने में, वो समझता है मैं अकेले सेंटर पर रहता हूं, मैंने किया किसको क्या पता। लेकिन उसका एक का बाबा कई बार कहता है तुम एक बहुत ऊंची स्टेज पर हो, तुम्हें पूरी विश्व देख रही है, सबकी नजरों में है, हर एक की नजर है। हम एक ब्रह्मा कुमार, एक ब्रह्मा कुमारी नहीं है, अकेले नहीं है। मान लो आज आपने ब्रह्मा कुमार का बैज लगाया है, भले ये बैज नहीं है, ये केवल ये बैज आप लगा करके मार्केट के आगे चले जाओ, आबू में चले जाओ, और आप सिर्फ दुकान वाले को बोलो मुझे चाय दे दो, फट से आपकी तरफ नीचे से ऊपर तक देखेगा, ये चाय क्यों मांग रहा है, तो बैज लगाया हुआ है, ब्रह्मा कुमार कभी बाहर की चाय नहीं पीता है। वो बताएगा आपको, कई यहां आते हैं योग शिविर में, वो समझते हैं हम जाएं कुछ ले आए, कुछ खा के आ जाएं, यहां तो मिलता नहीं ये चीज। वो जाते हैं दुकान वाले से मांगते हैं, अगर बैज लगाए वो देता नहीं है, कहता नहीं आप अगर ब्रह्मा कुमारी में आए हो तो ब्रह्मा कुमारों के लिए निषेध है, मना है, वो नहीं खा सकते हैं। माना उनको हमारी धारणाओं के बारे में फुल पता है, और अगर हम कहीं भी भूले चुके कुछ उल्टा कर रहे हैं तो सबकी नजरें आपके ऊपर जाती, पूरी संस्था बदनाम होती है। यज्ञ रक्षक बच्चे वो हैं जो हर नियम का, हर श्रीमत का, हर मर्यादा का यथार्थ रीति से पालन करते हैं, और अगर कहीं पर भी कोई मर्यादा का उल्लंघन करता है वो यज्ञ के आगे किचड़ा है, गोबर डालता है। कहते हैं ना यज्ञ में असुरों के ने गोबर डाला था, छेना फेंकते थे, वो छेना गोबर का थोड़ी फेंकते थे। हमारी आसुरी संकल्प, आसुरी धारणाएं, आसुरी वृत्तियां यज्ञ में बहुत बड़ा विघ्न है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे अगर तुम्हारा बाबा के यज्ञ से प्यार है तो से केवल तन मन धन बाबा के यज्ञ में लगा दिया, यही यज्ञ सेवा नहीं है। तन मन धन लगाने वाले बहुत आजकल हैं, लगा रहे हैं, ठीक है। हमने अगर तन लगाया है तो हमारा भाग्य है कि हमारी कर्म इंद्रियां बाबा के कार्य में लगी, सेवाओं में लगी, बाबा के काम में यूज हो गई, ये तन हमारा निरोगी बन जाएगा। हम लोगों का अनुभव है, 11 साल तक बाबा ने हमें सब स्थूल सेवाएं कराई। यज्ञ में हम लोग 72-71 में समर्पित हुए। उस समय यज्ञ के अंदर कोई भी साइंस के साधन नहीं थे, सब कुछ मैनुअल था। माना धोबी घाट भी पाटे पर होता था, हम लोग कुछ छटते थे, रात को भट्टी चढ़ाते थे, सवेरे चटका लगाते थे। रोटी चूल्हे पर बनती थी, ईंट अपने कोयले पर पकाते थे, कोयले की सिगरियां जलाते थे और लकड़ियों पर पका रोटी बनाते थे। ड्रामा चेंज होता है, यज्ञ की वृद्धि हुई, बाबा का नया नया रूप हम देखते आए हैं यज्ञ की वृद्धि के। 83 जब ये ओम शांति भवन बना है, ये अनेक वरदान लेकर के आया है, रूप परिवर्तित किया है इसने आकर के। 83 तक जितनी छतें पड़ी हैं, जितने मकान बने हैं, हर साल बने, हर साल एक बिल्डिंग नई बनी है। 72 से मैं अगर गिनती कराऊं तो आज तक भी नए बिल्डिंग हर साल एक बनी है, और हर बिल्डिंग 83 तक केवल मधुबन निवासी और सेवाधारियों ने बनाई है, कोई नौकर नहीं, कोई बाहर के इंजीनियर नहीं। छत डालने तक, ओम शांति भवन की कैंची तक भी, इसका नक्शा भी केवल मधुबन वालों ने बनाया। सारा कार्य पत्थर तोड़ने से लेकर के सफाई करने से जो काम होते थे सब हम लोगों का, दादी बल भरती थी, हिम्मत दिलाती थी और पहुंच जाते थे। 4-6 घंटा कर्मणा सेवा हर एक को करनी है। पार्टी में आ गए तो चाय अगर है 4 बजे की, चाय ओम शांति भवन वहां पर मिलेगी। सब पत्थर पहले उठाएंगे फिर चाय पियेंगे, दादी साथ में है। सब ने अपनी रग रग हड्डी हड्डी इन सेवाओं में यज्ञ में दी, यज्ञ की वृद्धि हुई, यज्ञ का विस्तार हुआ। और आज हम देख रहे हैं कैसे बाबा के गुप्त बच्चे यज्ञ को भर रहे हैं, पता नहीं चलता है। हजारों भाई बहने आते हैं, इतने लोग खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, इतनी व्यवस्था, कैसे सब चल रहा है, कौन इनको कह रहा है, कौन इनके ऊपर गाइड है, दिखाई देता है कोई? सब ऑटोमेटिक जैसे मशीनरी चल रही है, लेकिन इसको गाइड करने वाला जो गुप्त है वो तो दिखता नहीं है। तो बाबा का यज्ञ है, यज्ञ पिता ने इसकी स्थापना की है, और जो ब्राह्मण आत्माएं इसके स्नेही बने, सहयोगी बने, इसके रक्षक बने, वो आज हर प्रकार से, अगर तन से सेवा की है तो तन से निरोगी है, दिल से की है, अगर मन लगाया है तो मन बड़ा अच्छा बन गया है, चंचलता बंद हुई है, शीतल है, शक्तिशाली है, अगर धन लगाया है तो कोई भी धन उनके पास कमी नहीं पड़ी है, और भरपूर हो गए, माला माल हो गए। एक दिया है तो बाबा ने इसी जन्म में इसी समय रिटर्न में 1000 दिया है। भविष्य की कोई भी हम परिकल्पना करके कि हम भविष्य में हम पाएंगे इसका, बाबा कहता बच्चे ये यज्ञ जो है तुमको मन इच्छित फल देता है और प्रत्यक्ष फल देता है। भविष्य की चाहना करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर बहुत प्यार से बाबा के यज्ञ के अंदर तन मन धन समय संकल्प श्वास शक्ति जो आपके पास विशेषता है बाबा के कार्य में लगा करके देख लो, यज्ञ पिता अगर प्रसन्न हो गया तो आपकी कोई भी कामना अधूरी नहीं रहेगी। जो संकल्प उठेगा, आज तक हम लोगों का ये संकल्प है, ये अनुभव है कि संकल्प अगर करता हूं तो लगता है ये संकल्प न करता तो अच्छा था, इतना आ गया अभी बंद करो इसको, क्यों संकल्प किया। संकल्प उठाने की देर होती है और चीज हाजिर हो जाती है, संकल्प भी सिद्ध हो रहे हैं। आज इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, आप सब देख रहे हो, कोई चीज की कमी बाबा ने नहीं रखी। कहां एक दिन था जो इस स्थान पर हम लोग आए, जब हम आए हैं उसी समय की बात मैं बताता हूं कि हम लोगों के अगर कोई कपड़े फटते थे तो कपड़े लेने के लिए हमको पुराने कपड़े दिखा करके दे करके फिर लेना पड़ता था। माना बनियाइन अगर मुझे 4 चाहिए साल भर के लिए, तो 4 बनियाने जो मेरी फटी हैं, ऐसे नहीं तो मैंने वेस्ट कर दिया इधर उधर, लिखना पड़ता था ये पुराना है, ये बीच का है, ये नया है। इतना है मेरे पास और इसके बाद मुझे ये चाहिए। लिख करके कागज पर दिया तो दादियां कभी कभी, मैं दीदी थोड़ा स्ट्रिक रहती थी, कहती थी दिखाओ ले आओ पहले क्या क्या है, किसको तुम पुराना कहते हो किसको बीच का कहते हो। अगर मान लो हमने बीच में लिख दिया कि बीच वाला है और वो थोड़ा ठीक है, तो दीदी कहती थी अभी इनको नए कपड़े नहीं मिलेंगे यही पहनना है, ये तो बिल्कुल ठीक है फटे नहीं है, और अगर फटे हैं तो उसको क्यों नहीं सिलाई किया है, सिलाई करो पहनो चट्टी लगा के पहनो, 108 चट्टियां लगा करके आपको पहनना है, कोई भी ऐसे नहीं फेंक देगा इधर उधर चला जाएगा, एक एक चीज खाने में भी पहनने में भी, क्योंकि इकोनॉमी थी डिग्री पार्ट था। और उसके बाद यज्ञ की धीरे धीरे वृद्धि हुई, पालना बाबा ने हर प्रकार की अच्छे से अच्छी की, लेकिन एक एक बात के लिए हम लोगों ने जो पहले पहले देखा है शुरू में, आज तक भी कभी इच्छा नहीं होती ये चीजें मुझे चाहिए, बाबा को जो जरूरत होगी जो आवश्यकता मुझे होगी बाबा अपने आप दे देगा। तो वो दिन भी बहुत प्यारे थे जब यज्ञ के अंदर बहुत इकोनॉमी थी, बहुत इकोनॉमी थी। अब बाबा कहता है बच्चे स्थूल में सब प्राप्तियां हो रही हैं, लेकिन अभी संकल्पों की एकानामी करो, बोल की एकानामी करो, अपनी स्थिति में कोई भी शक्ति व्यर्थ न जाए उसकी इकोनॉमी करो, ये इकोनॉमी की जरूरत है। स्थूल में अगर कुछ आ भी रहा है कोई दे भी रहा है तो तुमने अपने डिपार्टमेंट में कितनी इकोनॉमी की। धन से हम भले यज्ञ में सहयोगी नहीं है, धन हम नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास डिपार्टमेंट है अगर उसमें मैं कम से कम खर्चा कर रहा हूं तो धन की मार्क्स हमारी जमा हो रही है। ये लक्ष्य रख करके जितने पुराने डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, हमारे पास तीनों जगह डिपार्टमेंट है, एक बार एक जगह से बहुत महंगी फोटोकॉपी मशीन आई, कंपनी वाले तो एडवर्टाइज करते हैं ना, तो हमने पूछा है कितने की है, तो बोला 9 लाख की है, और हमें प्रेशर भी आया कि इसको ले लो, अभी थोड़ी कोई इतनी इकोनॉमी करने की जरूरत है। तो मैंने कहा 9 लाख की मशीन अगर मैं एक जगह रखूंगा, हमारे पास 3 जगह डिपार्टमेंट हैं, तो पहले बजट बना लो 3 जगह की मिलेगी, अगर एक को दूंगा तो 2 नाराज हो जाएंगे, उनको भी तो देना पड़ेगा ना एक जैसा ही, मैं 9 लाख की मशीन नहीं लगा सकता, भले कोई फ्री भी दे, अगर देता है तो 3 दे एक नहीं। तो बोला फिर क्या करेंगे, हमने कहा मशीन आएगी हम अच्छी चीज लगाएंगे, लेकिन हम 9 लाख वाली नहीं लगाएंगे, वही मशीन रिकंडीशन जो विदेश की होती यहां मिलती है 1 लाख में मिलती, वैसे ही रिकंडीशन करते वहां से खोल के पुर्जे लाते हैं यहां बनाते हैं यहां बेचते हैं मैकेनिक लोग, मंगा लिया, तीनों जगह दे दिया 3 लाख में। हम लोगों ने कहा तुम सेकंड चीज रखते हो इसमें और परेशान होते रहोगे, हमने कहा तीन मशीनें 3 लाख में दी गए ना, अगर ये साल में 6 भी खराब करेंगे तो भी मेरे ऊपर उतना बजट नहीं आएगा, आप चिंता नहीं करो। सिखा दिया एक भाई को, पूरी ट्रेनिंग दिलवा दी, आज तक भी साल 2 साल 3 साल 4 साल मशीनें चलती हैं, वही चल रही हैं, ठीक चल रही हैं, और जब लगता है कि चलने जैसी नहीं रही फिर चेंज कर दो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इतना यज्ञ का मुझे खर्चा नहीं करना है। ये बाबा का यज्ञ जितना इकोनॉमी से चल सके हम अपने तरफ से इसकी बचत करके चलाएं, सफल करने वाले सफल कर रहे हैं, कोई चीज की कमी बाबा ने नहीं रखी है, जिसको भी टच करे बाबा करा सकता है, लेकिन बाबा कहता मेरे गरीब बच्चों की पाई पाई से यज्ञ चलता है, यज्ञ में रहने वाले इसको व्यर्थ करेंगे तो उनके ऊपर उसका बोझ चढ़ जाएगा। इसलिए इतना अटेंशन अगर डिपार्टमेंट में रखा जाता है तो देने वालों की बड़ी दिल होती है, मुझे आज तक स्टेशनरी खरीदनी नहीं पड़ती, लाखों रुपए की स्टेशनरी हमारे डिपार्टमेंट से खर्च होती है, तीनों स्थान है, कितने सारे रजिस्टर आते हैं, कितनी वैरायटी आती होगी, लेकिन देने वाले बाबा के गुप्त बच्चे ऐसे देते कहते दूसरे को पता भी नहीं चले, स्नेह है बाबा से, यज्ञ से प्यार है, सहयोगी हैं, उनको ऐसे लगता है कि बाबा का यज्ञ एकदम निर्विघ्न चलता रहे, इसलिए बहुत बाबा के गुप्त बच्चे तन मन धन समय सब सफल कर रहे हैं, जो कर सकता है कर लो, कल किसने देखा। हमेशा दादी कहती थी, अगर कोई कहता है दादी मेरा बैंक में रखा है, जरूरत हो तो बताना, तो दादी उससे कहती थी मुझे कोई जरूरत नहीं है, तुम रखो बैंक में, रखा रहने दो, जला जाएगा ऐसे ही। दादी क्यों मांगेगी तुम सफल करो। कभी भी दादियों ने किसी को नहीं कहा जिसकी इच्छा है करो। सफल करने का ये समय है, जैसे बीज बोने का समय होता है, अगर उस समय कोई किसान सोचे पता नहीं मैं मिट्टी में बीज डाल के आऊंगा, धरती मैया देगी या नहीं देगी, बरसात पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, सूखा पड़ जाए, ये हो जाए, क्या होगा, बीज बोने के समय वो सोचता रहे, सोया रहे, जब सबकी फसल कटेगी तो वो क्या कहेगा, वो तो रोएगा ही ना। तो बाबा कहता है ये संगम युग 84 जन्मों के लिए बीज बोने का युग है, समझ चाहिए। यज्ञ पिता ने यज्ञ रचा है, यज्ञ सफल होना है, पहले अपनी कमी कमजोरियों के तिल और जो इसमें स्वाहा करो, जो तुम्हारे अंदर ऐसे बुरे संस्कार हैं, बुराइयां हैं, कुछ भी है, उसको सफल स्वाहा करके यज्ञ को सफल बनाओ, और फिर जो तुम्हारी शक्ति है, जिस प्रकार की शक्ति है, जिस प्रकार की कला है, जिस प्रकार की विशेषता है, बाबा के यज्ञ में लगा करके सफल करके एक का कई गुना रिटर्न ले लो। संगम पर भी मिल रहा है, इस समय भी मिल रहा है। मैंने कहा हम लोग कभी कभी हंसी से कहते हैं हमने 11 साल तक सबके कपड़े धोए, सब बहन भाइयों के धोए, और आज हम लोगों को कोई एक कपड़ा भी धोना नहीं पड़ता है, बाबा अपने आप सब धुला करके प्रेस करा के देता है। 11 साल तक हम लोगों ने प्रेस वाले कपड़े नहीं पहने, प्रेस का नाम ही नहीं था। क्या करते थे, धो करके धुलाई करके आता था, उसको थोड़ा सा गीला रख करके उसमें पानी की बूंद डाल करके तह करके तकिया के नीचे रख देते थे, या बिस्तर के नीचे बिछा लेते थे, ऊपर सो जाते थे, प्रेस हो जाते थे, सवेरे पहन लेते थे। और आज हम सबको प्रेस किया हुआ, धुला हुआ सब कुछ कपड़े मिल रहे हैं, कोई जरूरत नहीं पड़ती, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। तो रिटर्न तो इसी समय बाबा ने दिया, जिसने प्यार से जो सेवाएं की यज्ञ में, तन से की, मन से की, धन से की, समय जिस प्रकार से की, उसको रिटर्न इसी जन्म में मिल रहा है, इसी समय मिल रहा है। अगर हम सब बाबा के प्यार से किसी प्रकार से सहयोगी बने, कहीं भी रह करके, यज्ञ पिता प्रसन्न होना चाहिए। ये बच्चा जो कुछ करता है बड़ा गुप्त करता है, कई करते हैं लेकिन दिखाते हैं कि मैंने इतना किया, पता तो चले, बड़ों को तो पता चले, दादियों को तो पता चले, फिर दूसरे से पूछेंगे तूने कितना किया, बाबा दादा तुमने पूछ पूछ करके अपना जो किया वो भी खत्म कर दिया। इसलिए बाबा ने जो अपनी एक विधि रखी कि बच्चे इस हाथ से करो तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, इतना गुप्त दान महापुण्य, तुरंत दान महापुण्य और गुप्त दान महापुण्य। इसलिए गुप्त रीति से बाबा के यज्ञ में जो जितना कर सकता है, यज्ञ चल रहा है, अंत तक चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। सफल करने वाले बच्चे तन सफल कर रहे हैं, मन सफल कर रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं और देख रहे हैं कि बाबा उसके रिटर्न में उनको कितना सुख समृद्धि दे करके बहुत अच्छी तरह से उनको भी चला रहा है और यज्ञ को भी बढ़ा रहा है। तो हम बाबा के बच्चों को बहुत दिल से, जिस प्रकार की जो शक्ति है, दादी ने कई बार कहा, एक बार क्या हुआ, जब ज्ञान सरोवर बन रहा था ना, एक दो इतिहास सुना देता हूं, बड़े रमणीक है, क्योंकि ज्ञान सरोवर लिया कैसे उसकी बड़ी विचित्र कहानी है। जब वो जमीन बाबा ने मना कर दी नहीं लेना, और सबको लक्ष्य था ये छोटा पड़ रहा है, 5,000 लोग आने लगे, कहाँ रहेंगे, यहाँ तो 200-400-500 आते अभी भर जाता है, फिर भी हम लोग सब अपने कमरे खाली कर देते थे, हम लोग बाहर होते थे, सबको कहते थे हमारे कमरे में पट बना दो, 50-40 लोग सो जाओ एक कमरे में, तो ये सारे घर में हम कितने लोगों को सुला लेते थे, हम लोगों के कोई कमरे नहीं होते थे बाहर। लेकिन धीरे धीरे जब छोटा पड़ने लगा, बहुत वृद्धि होने लगी, विदेशी आने लगे, तो दादी को संकल्प तो आता था कोई स्थान बनना चाहिए, कोई स्थान लेना चाहिए, कहाँ ले, कैसे ले, कहाँ मिलेगा। तो एक दिन बाबा आए थे, सवेरे 7 बजे तक रहे, और जब जाने लगे तो दादी को ऐसे बुला के वैसे बिठाया और ऐसे हाथ करके बोलते, इस साइड में ना दूध वालों से पूछना, वहां जमीन ले लेना, मिल जाएगी सीधा ही। तो दादी ने देखा कि बाबा जब गए तो वल्लभ भाई जो दूध मंगाता था गांव वालों से, दादी ने उसको बुलाया कि बाबा का इशारा मिला है कि दूध वालों की तरफ है कोई जमीन, आप जाओ पता लगा के आओ। तो एक दूध वाला सामने से आके वल्लभ भाई को बोलता है, वल्लभ भाई मेरे पास एक बहुत बड़ी जमीन पड़ी है, आप लोगों को जरूरत है क्या? इधर बाबा बोल रहा है, उधर वो आ रहा सामने से। तो बोला हाँ जरूरत है, मेरे पास दादी का विचार है इधर लेने की, तो आओ हम दिखाते हैं आपको। तो जब देखने के लिए गए तो सारा जंगल पूरा कांटे ही कांटे। बोला ये क्या करेंगे लेकर के? तो दादी ने कहा चलो हम भी देखते हैं। दादी आई गई देखने के लिए, बोले कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत बड़ी सेना है, हम इसको साफ कर लेंगे, ले लो जितने में मिलते। बेचारे ने बहुत अच्छे रेट में उस जमीन को, जो भी थे जितने पार्टनर थे, 30-35 एकड़ जमीन उन्होंने सब ने लिख करके प्यार से दूध वालों ने दे दिया। वो फिर नक्शा नहीं पड़े, नक्शा कैसे बने, वहां रोड ही नहीं थी, जमीन भी गांव वालों की खेती वालों की कैसे ट्रांसफर हो। कई बातें आती हैं सरकारी पर, विघ्न आते हैं बहुत सारे। बाबा ने ऐसा नाटक रचा उसका बड़ा कहानी है। एक साल के अंदर नक्शा पास हो गया, रोड डिक्लेयर हो गई, और डिक्लेयर होने के बाद जो निमित्त बना उसका गवर्नर था, पहले चीफ मिनिस्टर के तरफ से रुकावट आती थी, चीफ मिनिस्टर को एक साल के लिए उतारा गया गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नर निमित्त बना और निमित्त बन के सारे नक्शे पास करा दिए। खुद अपने भाषण में कहता है गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी तरफ से यहां पर रोड बनेगी सरकार की तरफ से। अब रोड है ही नहीं नक्शे में, और उसने डिक्लेयर किया तो अपने आप रोड बन गई। तो ड्रामा ऐसा है, बाबा साथी है, यज्ञ का रक्षक है, करण करावनहार है, खुद बाबा अपने बच्चों को किसी न किसी को निमित्त बना करके आज इतना बड़ा ज्ञान सरोवर बनवा दिया। फिर शांतिवन जब लिया, शांतिवन की कहानी तो बड़ी विचित्र थी। 94 में एक बार दादी ने कहा बड़ा मेला करेंगे, कैसे करेंगे, टेंट लगाएंगे। मधुबन में भी बहुत सारे टेंट थे, फिर टेंट वालों को बुलाया, एक बहुत बड़ा मेला लगाया, 10,000 लोगों को बुलाया, बाबा को भी टेंट में बुलाया, हम सब ने टेंट में सब प्रकार की सुविधाएं की। और एक दिन लास्ट में आई आंधी, सारे टेंट उड़ा के ले गए, सब फाड़ दिए, और खूब बरसात पड़ी, जितने लोग थे सब भीग गए, सबका सामान भीग गया। अब दादी की नींद फिटी, 2 बजे 1:30 बजे देखा ये क्या हो गया, अब ये सब कहाँ जाएंगे, 10,000 लोग पड़े हैं। जब दादी ने कहा सबको उठा दिया, मोहिनी को सबको उठाया, चलो चलो देखें क्या हो रहा है। हम जब देखने गई देखा सब कुछ नष्ट हो गया, सब खत्म हो गया, भीग गए सब। बाबा को बताया गया, बाबा को तो पता सब चलता ही है। बाबा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्थान बना दो, थोड़ा सा स्थान बना लो, नहीं तो छुट्टी नहीं मिलती थी। बाबा छुट्टी दे इतना बड़ा बनाने की, कहां से आएगा पैसा, क्या होगा, वो अगर तूफान नहीं आता तो मैं समझता हूं शांतिवन बनता ही नहीं। वो तूफान आया, फिर बाबा ने कहा स्टेज के लिए एक थोड़ी सी स्टेज बना लो, फिर धीरे धीरे हाल बना लो, फिर धीरे ये बना लो, फिर धीरे 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 आज शांतिवन में 15-16 हजार लोगों की रहने की व्यवस्था हो गई, आराम से रह सकते। लेकिन बाबा ने कराया बड़े युक्ति से, बहुत धीरे धीरे, बहुत परीक्षाएं लेकर के गाइड करता गया, और आज यज्ञ को इतना विस्तार कर गया, करण करावनहार करा रहा है, बच्चे निमित्त हैं, और गुप्त रीति से करने वाले बाबा के बच्चे, कुछ पता किसी को नहीं चलेगा कौन क्या कर रहा है, चल रहा है बाबा का यज्ञ। यज्ञ पिता है, यज्ञ माता है, वो यज्ञ में बैठे हैं, कहीं गए नहीं है, ध्यान रखना यही है, और वो यज्ञ को अपने आप चला रहे हैं, बच्चों को कोई को भी निमित्त बना देते, टच कर देते, और वो बाबा के कार्य में मदद कर देते। तो आप सभी भी क्या करेंगे, बाबा के यज्ञ में जिस प्रकार का सहयोग दे सकते, कोई से पूछने की जरूरत नहीं है कितना करना चाहिए। कई माताएं होती है ना, तुमने यज्ञ में कितना किया, पूछेंगी दूसरे से, अरे इतने इसके पास इतनी शक्ति थी, उसने इतना किया, तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, तुम करो, मांगता थोड़ी किसी से कोई। तो अगर बाबा के यज्ञ में कोई दिल से अपना तन मन धन सफल करेगा, यज्ञ को, यज्ञ पिता को मदद कर देगा यज्ञ के कार्य को बढ़ाने में, तो बाबा उसको रिटर्न देने के लिए बंध जाएगा, और एक दिन आएगा जो बाबा कहेगा बच्चे अभी नहीं चाहिए, टू लेट अभी नहीं लगाया है बोर्ड, अभी ले रहा है, सफल कर रहा है। तो जब तक सफल हो रहा है सबका, तो समझदार वो हैं जो गुप्त रीति से तन मन धन सफल करके अपना भाग्य बना रहे हैं। ठीक है, तो यज्ञ रक्षक भी बनना है, यज्ञ स्नेही भी बनना है, यज्ञ सहयोगी भी बनना है। रक्षा है हमारी ऊंची धारणाएं, हमारी ऊंची स्थिति, जो नियम मर्यादाएं श्रीमत बाबा ने बना करके दी हैं, अगर उसके प्रमाण हम चल रहे हैं तो यज्ञ रक्षक हैं। अच्छे वाइब्रेशन फैलाओ, बहुत पॉजिटिव संकल्प करो, और सहयोग तन मन धन से कर रहे हैं तो स्नेही हैं, सहयोगी हैं, तो योगी बन जाएंगे। ओके, ओम शांति।
यज्ञ कुंड में बैठे बैठे सुनाया आपने यज्ञ वत्सों को यज्ञ पिता और यज्ञ माता की मनोरम कहानी। यज्ञ स्नेहियों की लगन की अग्नि सुनकर प्रज्वलित हुआ है हमारी पुरुषार्थ की अग्नि, प्रज्वलित हुआ है हम सबके पुरुषार्थ की अग्नि। यज्ञ स्नेही और यज्ञ सहयोगी बनकर अब जरूर संपन्न करेंगे इस रुद्र यज्ञ को, जरूर संपन्न करेंगे इस रुद्र यज्ञ को, है ना? ऐसे तो हम बहुत बहुत आभारी हैं आदरणीय भाई जी का कि आपने बहुत सुंदर शब्दों से, अनुभवों से हम सबके सामने इस यज्ञ का पूरा चित्र रखा। बहुत बहुत धन्यवाद।